आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।
आज के अखबार,
आज के अखबार।
नमस्कार, आज तारीख हो गई है 31 मार्च और मैं हूं अमन गुप्ता। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का खास सेगमेंट आज के अखबार। यहां पर हम देश दुनिया के अखबारों से आपके लिए सुर्खियां लेकर आते हैं। मेरे साथ यहां मेरे साथी प्रतीक वाघमारे होते हैं जो हर रोज आपको अखबारों से खबरें बताते हैं। तो प्रतीक मेरे साथ मौजूद हैं। प्रतीक, शुरू कीजिए देश के अखबारों से, बताइए क्या छपा है।
गुड मॉर्निंग अमन। हर अखबारों में प्रमुखता से एक खबर छपी है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से हालत बद से बदतर हो रहे हैं, ये पूरे देश के लिए खतरा है। दैनिक भास्कर से मैं ये हेडलाइन पढ़ रहा हूँ कि देश में जहाँ भी कोरोना की दूसरी लहर, वहाँ पिछले पीक से 2 से 3 गुना मरीज मिलने लगे हैं। तो ये काफ़ी चिंताजनक मामला है और नया पीक को लेकर भी अब चर्चा शुरू हो गई है। नया पीक कब आएगा, इस बारे में फिलहाल साइंटिस्ट कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इसके अलावा भास्कर एक्सपर्ट में ये छपा है जिसमें चेयरमैन है कोविड नेशनल रिसर्च टास्क फोर्स भारत सरकार के डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा, उन्होंने कहा है कि डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त होने पर भी टेस्ट कराना अब जरूरी, क्योंकि 20% मरीजों में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। हम पहले बुखार, जुखाम, खांसी जैसे लक्षण जब आते थे तब हम कोरोना जांच के लिए जाते थे, लेकिन अब डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त होने पर भी टेस्ट कराना जरूरी हो गया है।
अच्छा प्रतीक, एक खबर मैं आपको बताता हूँ, भास्कर अखबार में छपी है। ये हेडिंग लगी है, अरसे बाद यूं मुलाकात, ना नज़र मिली ना बात, लेकिन पहली बार भारत पाक विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाए। तो दरअसल ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, वहां पर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन था कल। यहां पर 30 देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी थे और उनके पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरैशी भी थे। लेकिन इस दौरान, जैसा कि कल हमने आपको खबर में बताया ही था कि कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई दोनों देशों के बीच, जो नहीं ही होनी थी, लेकिन ये भी देखा गया कि दोनों लोग एक दूसरे से नज़र भी मिलाने से बचते रहे। फोटो सेशन के दौरान भी देखा गया दोनों अलग अलग खड़े हुए थे, अलग अलग देख रहे थे, अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे, दोनों लोग आमने सामने नहीं आए और इसकी तस्वीर भी अखबार ने छापी हुई है। दरअसल हार्ट ऑफ एशिया जो सम्मेलन था जो 29 और 30 तारीख में हुआ, इसमें तमाम देशों ने कई मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन साथ ही साथ जिस अहम मसले पर बातचीत हुई वो ये कि अफगानिस्तान में शांति बहाल कैसे की जाए।
और अमन, भास्कर से ही मैं पढ़ रहा हूँ कि 1 अप्रैल से बदलेगा सैलरी स्ट्रक्चर, हाथ में वेतन कम आएगा पर बचत बढ़ेगी। तो ये जो नया वेतन कानून है ये नए वित्त वर्ष से लागू हो सकता है। 1 अप्रैल से सैलरी स्ट्रक्चर और जितने भी इनकम टैक्स नियम है, ऐसे कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इनका असर सीधे आम लोगों के जीवन पर भी दिखेगा, क्योंकि आयकर की मौजूदा दर है और जो भी स्लैब्स है उनमें बिना किसी बदलाव के नए श्रम कानून लागू होने की संभावना है। इससे ये एक बदलाव होगा कि कर्मचारी का जो मूल वेतन है यानी बेसिक सैलरी है, वो अनिवार्य रूप से उसकी जो CTC है, कॉस्ट टू कंपनी का, वो 50% हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल ले, अगर किसी की CTC 40,000 रुपये है तो उसका जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 रुपये रखना अनिवार्य होगा। ऐसे कई बदलाव आने वाले हैं 1 अप्रैल से।
प्रतीक, अभी मैं देख रहा हूँ हिंदुस्तान अखबार और इसमें एक खबर लगी है जिसकी हेडिंग है, आतंकी बने इंजीनियरिंग के 12 छात्रों को उम्र कैद। प्रतीक, जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ कि कैसे पढ़े लिखे लोग कैसी कैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो खबर ये है कि जयपुर का जो जिला एवं सत्र न्यायालय है, उसने कल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के स्लीपर सेल से जुड़े इंजीनियरिंग के 12 छात्रों को दोषी ठहराया है और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। 2014 में इन सभी 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनके खिलाफ देशद्रोह और विस्फोटक रखने के तमाम मामले लगे थे जिसके तहत इन्हें दोषी माना गया है। ख़ास तौर से ये लोग जो थे वो बम बनाने की साजिशों में शामिल थे। और जिन लोगों को सज़ा सुनाई है उनमें से एक मोहम्मद अम्मार हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, गया ज़िले के। बाकी जो दोषी हैं वो सारे राजस्थान के अलग अलग शहरों के निवासी हैं।
और दैनिक जागरण में देख रहा हूं मैं, इसमें छपा है कि नोएडा गाजियाबाद से दिल्ली के जाम पर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त है, क्योंकि नोएडा और गाजियाबाद से जो दिल्ली की राह वो पिछले कई महीनों से उसमें मुश्किलें आ रही है, घंटों ट्रैफिक जाम झेलना पड़ रहा है, रोज़ाना काम के लिए निकलने वाले लोगों की को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और साफ है कि रास्तों पर यातायात के इस बढ़ते बोझ का एक कारण दिल्ली से लगने वाली सीमाओं पर जो किसान आंदोलन चल रहा है वो भी एक रीज़न है इसका। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने लगा है। कई स्थानीय निवासियों ने, एक नोएडा की रहने वाली है मोनिका अग्रवाल, उन्होंने एक याचिका दाखिल की है और कहा है कि दिल्ली, नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट के बजाय अब 2 घंटे लगने लगे हैं। ऐसे ही गाजियाबाद कौशाम्बी के मामले में भी कौशाम्बी अपार्टमेंट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी याचिका इसमें दर्ज की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल ये कदम उठाया है कि जो केंद्र सरकार है और दिल्ली पुलिस है उन्हें नोटिस जारी किया गया है इसे लेकर। और गाजियाबाद कौशाम्बी की यातायात अव्यवस्था पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली के उच्च अधिकारियों की एक 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान इनसे मांगा गया है। और यूएन की एक रिपोर्ट आई है इंडिया को लेकर, जनसत्ता में हेडलाइन छपी है कि सालाना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वर्ष 2019 से कम रहने की आशंका है। तो कोरोना के बीच वैक्सीनेशन तो लगातार चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो जीडीपी है वो 2021 में 2019 के स्तर से नीचे रहने की आशंका है, ये यूएन की रिपोर्ट कहती है। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया कि 2021-22 में जो भारत की आर्थिक वृद्धि दर है वो 7% रहने का अनुमान है, जबकि जो 2020 और 21 में महामारी और सामान्य कारोबारी गतिविधियों पर उनके प्रभाव पड़ने के कारण इसमें 7.7% से अधिक गिरावट होने का भी अनुमान है। इसके अलावा जो मूडीज है उसने कहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से काफ़ी ऊपर रहने वाला है। इंडिया के बारे में ये 2 खबरें प्रमुख हैं। और भास्कर में छपा है कि मध्य प्रदेश का एक बांधवगढ़ इलाका है जहाँ पर होलिका दहन वाले दिन से वहाँ के पास में जो जंगल है वहाँ आग लग गई और ये आग लगातार 3 दिन से अब तक जल रहा है और ये आग अब इतना विशाल रूप ले चुकी है कि अपनी जद में कई इलाकों को घेरते जा रही है। इसमें जो पर्यटन है उसे भी नुकसान पहुंच रहा है। और भास्कर के न्यूज़ ब्रीफ में एक छपा है कि सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा पर्पल पिंक डायमंड है वो अब बिकने जा रहा है। ये 15 कैरेट से भी ज़्यादा का है और इसकी नीलामी 23 मई को होगी और नीलामी संस्था है क्रिस्टी, उसके अनुसार इसकी कीमत 184 करोड़ रुपए से 279 करोड़ रुपए आंकी गई है। और नोकझोंक के इस कार्टून में छपा है कि एक फिल्म की तरह एक पोस्टर है कोरोना रिटर्न करके और नीचे लोग कह रहे हैं कि हम चाहें तो इसे फ्लॉप कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर, लेकिन कई जगह आप खुद देख रहे हैं कि लोग किस तरह से इसका पालन कितना कर रहे हैं। और ये ट्रिब्यून अखबार है अंग्रेज़ी का, इसमें मैं देख रहा हूँ कि वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स यानी WMCC इसने डिसाइड किया है कि अब एक नेक्स्ट राउंड होना चाहिए मिलिट्री कमांडर के बीच बातचीत का अगला दौर। हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है लेकिन इसमें भी LAC को लेकर, खासकर ईस्टर्न लद्दाख को लेकर बातचीत होगी, ऐसा सूत्रों के हवाले से ट्रिब्यून ने छापा है। साथ ही इसमें देपसांग को लेकर और गोगरा को लेकर भी बात होगी, डिसएंगेजमेंट इंडिया और चाइनीज ट्रूप्स को लेकर भी जो अभी हाल ही में बात हुई थी उस पर बात होगी, पैंगोंग सो पर जो बातचीत चल रही थी। तो ये नेक्स्ट 2 स्टेप्स हैं, डीएस्केलेशन और डी इंडक्शन, इस पर बात हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से ट्रिब्यून ने छापा है। और हिंदुस्तान अखबार में देख रहा हूँ, इसमें छपा है कि आसमान में छाया धूल का गुबार। कल आपने देखा होगा शाम को धूल उड़ने की वजह से हवाओं का गुबार था जो दिल्ली के आसमान पर छा गया था, इससे प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है मौसम विभाग के अनुसार कल शाम 5:30 बजे विजिबिलिटी लेवल भी घट गया था इसकी वजह से। सोमवार को भी कुछ हद तक ऐसी ही हालात थे। इसका कारण तेज हवा बताया जा रहा है और 40 डिग्री से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तापमान था सोमवार को, और कल 38 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज़्यादा ही है। अभी आगे भी मौसम विभाग ने बताया कि आगे 2 दिन तक तेज़ हवाएं चलेगी, लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से ये हवा चल सकती है, और इससे धूल का जो गुबार है वो काफ़ी हद तक छट जाने की संभावना भी है। लेकिन इससे प्रदूषण के लेवल में जो बढ़ोतरी हुई है, ये खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता है दिल्ली की, वो पहुँच चुकी है। और एक आर्टिकल का मैं जिक्र करना चाहूँगा, भास्कर के अभिव्यक्ति पेज पर छपा है ये, द प्रिंट के एडिटर इन चीफ है शेखर गुप्ता। इन्होंने लिखा है कि बीजेपी के चुनाव अभियान से उसके पसंदीदा मुद्दे गायब है। जितने भी 5 राज्यों के चुनाव प्रचार है उसमें ना तो पाकिस्तान को लेकर बात हो रही है, ना तो आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र भर भी नहीं है, और बांग्लादेश से जो घुसपैठियों की बात चल रही थी, बंगाल में बात होती थी, असम में बात होती थी, वो इस बार ये मुद्दे पूरी तरीके से गायब है। ये इंटरेस्टिंग लेख शेखर गुप्ता ने लिखा है, ये जरूर पढ़ सकते हैं।
अच्छा प्रतीक, ये तो हुई देश के अखबारों की बात, विदेश के अखबारों में क्या छपा है वो बताइए।
इंटरनेशनल अखबारों की बात करें अमन, तो सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा हूँ। इसमें जो जॉर्ज फ्लॉयड है, जिनकी हत्या एक पुलिस के द्वारा हुई थी, डेरेक चाउवीन जिनका नाम है, सेकेंड डे ट्रायल में 6 लोगों के ने जो वीडियो बनाए थे जॉर्ज फ्लॉयड का, को जिस तरीके से दबोचा गया था पुलिस के द्वारा, उसके वीडियो में उनकी टेस्टिफाई किया गया, उसे टेस्ट किया गया, उनके बयान भी लिए गए। इसमें एक 17 साल की लड़की भी शामिल है, उसने भी बताया कि ये कितना दर्दनाक हादसा था और काफ़ी डराता हुआ और गंभीर ये हादसा उसने बताया इसे। इसके अलावा इसमें छपा है कि वर्ल्ड लीडर्स का एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनने जा रही, ताकि आगे आने वाले टाइम में जितने भी महामारियां हैं उनसे लड़ने में मदद मिले। हालांकि इस पर अब तक US और चाइना के और रशिया के सिग्नेचर्स नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी तरफ पॉजिटिव रुख अपनाया है। और जर्मनी और कनाडा ने अब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसे उसके इस्तेमाल पर फिर रोक लगा दी है। कारण वही है, ब्लड क्लॉट्स को लेकर। इसके पहले भी ये कार्रवाई की गई है। कनाडा में 55 साल से जिनकी उम्र कम है उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी, और जर्मनी में 60 साल से जिनकी उम्र कम है उन्हें ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और न्यूयॉर्क टाइम्स में ही छपा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने अपने कुछ प्लान अनाउंस किए हैं, जितने भी हिंसाएं होती है एशियन अमेरिकन्स के खिलाफ उसे लेकर कुछ प्लान जारी किए हैं। जैसे एक तो लोकल गवर्नमेंट को इसके लिए तैयार किया जाएगा कि कैसे वो एंटी एशियन बायस होने से बचे। इसके अलावा कई $50 मिलियन तक की ग्रांट भी दी जाएगी जितने भी सर्वाइवर्स है डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट के, जो लैंग्वेज के आधार पर, फेस के आधार पर और खासकर एशियन के आधार पर होते हैं। और UK का अखबार है द गार्डियन, इसमें छपा है कि WHO की जो रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि कोरोना जो है वो चाइना की लैब से नहीं निकला है, इसमें UK और US है, इन्होंने इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया है और चाइना पर आरोप भी लगाया है कि चाइना ने ओरिजिनल डेटा नहीं दिया है, ओरिजिनल सैंपल मुहैया नहीं करवाए हैं, इसलिए ये रिपोर्ट अधूरी है। इसमें 12 और भी देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया कैनेडा भी शामिल है, उन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज़ किया है और लेटर को एक साइन किया है, ये कहते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से नहीं हुई है, रॉ डेटा के आधार पर ही रिपोर्ट जारी कर दी गई है। और चीन का अखबार है आखिर में अमन, मैं बता रहा हूँ ग्लोबल टाइम्स, इसमें इसी बात के जवाब में चाइना के जो एक्सपर्ट्स है जो WHO की टीम में थे उनका कहना है कि अब वुहान के अलावा भी दूसरे राज्यों में चाइना के वहाँ भी इसकी जाँच हो और दूसरी हाइपोथेसिस को ली जाए, उस पर भी जांच हो, केवल इस बात पर बात ना हो कि किसी लैब से ही ये निकला है वायरस, इस वजह से इसमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, इसलिए जांच का दायरा और बढ़ाया जाए, ऐसा चीन के साइंटिस्ट का मानना है। तो आज के अखबारों की यही प्रमुख सुर्खियां हैं अमन, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने देश विदेश के तमाम अखबारों से हम तक जरूरी खबरें पहुंचाई।
ये जो कान होते हैं ना, कान सर के दोनों तरफ, ये आपको दूसरी दुनिया में ले जा सकते हैं। और भाई, ये जो ऑडियो की दुनिया है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों से भरी हुई है, अलबेली जानकारियाँ हैं, इसलिए मैं अब सिर्फ पॉडकास्ट ही सुनता हूँ आज तक रेडियो पर। न्यूज़ भी मिल जाती है, हिस्ट्री के बारे में पता लगता रहता है, और एंटरटेनमेंट भी होता है। बिल्कुल अपने जैसे बंदे बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते रहते हैं, और क्या चाहिए भाई। गूगल करो आज तक .in/radio। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।